बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 13 अक्टूबर, दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर बड़े फिल्म एक्टर, निर्देशक, लेखक और पत्रकारों पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका से शुरू हुए मीटू आंदोलन के बाद खुद पर हुई जातियों के खिलाफ भारत में भी आवाज उठा रही हैं महिलाएं, लेकिन क्या मीटू के बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव होगा? आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पत्रकार जमाल खाशोगजी के लापता होने के मामले में सऊदी अरब की भूमिका साबित होती है तो उसे सजा के रूप में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमरीकी टीवी नेटवर्क CBS के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या इसके लिए सऊदी जिम्मेदार हो सकता है, तो ट्रंप ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि वो अमरीकी नौकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि अमरीका सऊदी अरब को सैन्य हथियार बेचता है। तुर्की के सूत्रों का कहना है कि इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में खाशोगजी की हत्या की गई, इसके सबूत उसके पास हैं। अमेरिका ने मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति को अपनी हालिया हार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने को लेकर चेताया है। अब्दुल्ला यमीन ने अपनी हार को कानूनी चुनौती दी है। उनका कहना है कि सितंबर में हुए चुनावों में धांधली हुई थी। मालदीव की सुप्रीम कोर्ट रविवार को इस मामले को सुनेगी। ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो संदेश में अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो ने कहा कि अगर राष्ट्रपति यमीन ने चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
And the international community would view with great concern any attempts to undermine the democratic process.
राजनीतिक प्रक्रिया को दरकिनार करने की अगर कोई भी कोशिश की जाती है तो उसे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर चिंता के तौर पर देखेगा। साथ ही 17 नवंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह में देरी भी इसमें शामिल है। मालदीव में लोकतंत्र, कानून का शासन या साफ चुनावी प्रक्रिया को कोई भी दरकिनार करता है तो अमरीका उसके खिलाफ उपयुक्त कदम के बारे में सोचेगा। ये थे अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो के शब्द। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि अफगान संघर्ष को समाप्त करने के लिए मनोनीत किए गए अमरीकी विशेष दूत जलमाई खलीलजाद के साथ उसने बातचीत की है। एक बयान में तालिबान ने कहा कि दोनों पक्ष भविष्य में बातचीत के लिए राजी हुए हैं। ये ऐतिहासिक बैठक शुक्रवार को कतर में हुई। हालांकि ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि जुलाई में अमरीकी अधिकारियों ने तालिबान नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दौरा करने के बाद खलीलजाद ने तालिबान से बातचीत की है। वहीं उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में एक चुनावी रैली में हुए धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में भूस्खलन और बाढ़ से कम 18 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों ने बताया कि भारी बारिश से क्षेत्र के 24 छोटे गांवों पर असर पड़ा है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस्लामी लड़कों का बोर्डिंग स्कूल भूस्खलन में दब गया है और उस जगह से 10 लोग लापता हैं। स्थानीय पुलिस प्रमुख इरसान सिनुहाजी ने कहा,
memang tadi lagi ada pelajaran kelas sore madrasah mungkin di atas gunung hujan।
जब ये घटना हुई तो वहाँ स्कूल में लेट क्लास चल रही थी। शायद पहाड़ पर तेज बारिश हो रही थी जिससे पानी नीचे आ रहा था। उस समय शाम की क्लास हो रही थी। मुझे सूचना मिली है कि क्लास में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 29 थी। ये थे स्थानीय प्रमुख इरसान सिनुहाजी के शब्द। सीरिया से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि देश के पूर्वी हिस्से में अमेरिका समर्थित सेनाओं के साथ संघर्ष में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि विस्थापित लोगों के शिविर पर आईएस ने छापा मारा और वहां पर 100 से अधिक परिवारों को बंधक बना लिया। कुर्दिश नेतृत्व वाला SDF हाजिन शहर के नजदीक यूफ्रेटिस घाटी में बड़ा अभियान चला रहा है। उसको विश्वास है कि यहाँ आईएस के हजारों सदस्य हैं। वेनेजुएला के प्रसिद्ध कार्यकर्ता लॉरेंट साले को रिहा करने का स्पेन ने स्वागत किया है। साले विमान के जरिए वेनेजुएला की राजधानी कराकस से मैड्रिड पहुंचे। उन्हें पिछले 4 सालों से कराकस के खुफिया मुख्यालय में रखा गया था और शुक्रवार को रिहा किया गया। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1811-2007001। भारत में पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई महिलाओं ने सामने आकर केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर बड़े फिल्म एक्टर, निर्देशक, लेखक और पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाएँ खुद पर हुई जातियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, और क्या इस पहल से महिलाओं की स्थिति में कोई फ़र्क आएगा, कोई बदलाव आएगा, कोई सुधार आएगा? आज इंडिया बोल में हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर, और इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सीधे श्रोताओं के साथ। सबसे पहले श्रोता इस समय हमारे साथ कौन लाइन पर जुड़ गए हैं?
जहाँ तक मेरा मानना है, मीटू का जो अभियान शुरू हुआ है, इसकी पहल बहुत ही जानी मानी हस्तियों के बीच में स्टार्टिंग हुई है। तो इसकी पहल में कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है, इसमें कितना सच है, सच्चाई है, इसका अभी तक जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा कुछ आंकड़ा निकल के सामने नहीं आया।
हमारे पहले कॉलर ने ये नहीं बताया कि वो कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है।
मैं माफी चाहूंगी, मैं नई दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर निशा सिंह।
डॉक्टर निशा सिंह, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए, एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
वंदना बोल रही हूँ न्यू दिल्ली से।
वंदना जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मी टू की मुहिम चली हुई है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर एक महिला होने के नाते क्या राय है आपकी?
थैंक यू सो मच। मेरी राय ये है कि जो भी मुद्दा है ये डिग्निटी का मैटर है, ये एक सम्मान का मैटर है। जो मतलब हमें बचपन से एक जो अपब्रिंगिंग होती है हमारी, क्या हमें सिखाया जाता है कि इसको इज्जत से और सम्मान से रिलेट कर दिया जाता है कि ये फैमिली का मैटर है, ऐसी चीजें इन्हें नहीं बताना चाहिए। ये अब वही चीजें हैं जो दबी हुई चीजें थी, वो निकल के सामने आ रही हैं। मतलब महिलाओं ने ठान लिया है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो अब चुप नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी। और ये बहुत जरूरी है, हर लेवल पे जरूरी है। काम करने की जगह हो, घर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर एक महिला ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही होना चाहिए, और उसे अपनी सम्मान से या ईगो से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये जो चीजें गलत है वो गलत है, बस उसी के साथ चलना चाहिए। हाँ, ये जो मुहिम है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, मतलब जो हमारे साथी हैं, पुरुष लोग हैं, जो ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये मी टू के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इसके घेरे में आ रहा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जहां पर कोई भी महिला अपनी बात कहने से डरे नहीं।
बहुत शुक्रिया वंदना, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाह रही हैं आप?
नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये मुहिम स्टार्ट हुई है, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, तो उसमें जो मैंने एक थिन लाइन देखी है वो बहुत कम समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। ऐसे लोगों का कहना है 10 साल पहले कहाँ थी, 5 साल पहले कहाँ थी। तो ये इस पे एक वही बात आ गई फिर से कि हमें चुप रहने का सिखाया जाता है। हर कोई ये सोचता है कि पहले कोई बोल दे फिर हम अपनी आवाज रखें, पहले कोई बोल दे तो हम अपनी आवाज रखें। तो बस इसी, ये जो अब चीजें हैं, ये जो थिन लाइन है वो खत्म हो रही है, और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसको समझिए, इस पे मतलब आरोप और ऐसी चीजों को बाद में लगाइए, पहले समझिए, उस तकलीफ को समझने की कोशिश करिए कि क्यों इंसान चुप रह जाता है, नहीं बोल पाता है। जब आप उनके साथ खड़े होंगे तो शायद उनको हिम्मत मिलेगी और सही गलत की जो चीजें आ रही हैं सामने वो भी ठीक हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया वंदना, ये थी हमारी श्रोता डॉक्टर निशा, हमारे साथ लाइन पर बनी हुई है। डॉक्टर निशा, ये जो वंदना हमारी श्रोता कह रही थी कि साजिश वाली बात कहते हैं लोग, इसमें ये पहलू लाते हैं कि 5 साल पहले क्यों नहीं लाए, 10 साल पहले क्यों नहीं कहा आपने, और ये हिम्मत जुटा के जो सामने आ रही हैं, जो इन्होंने तर्क और दलील रखी, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं या इसमें कुछ और बातें आपको लगता है अभी और जोड़ना बाकी हैं?
वंदना जी ने जो कहा है वो काफी हद तक सही है, लेकिन मैं फिर भी उसमें एक जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं भी एज ए वर्किंग वुमेन हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, मेरे भी सब फ्रेंड सर्कल हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ठीक है कि ये एक अभियान शुरू हुआ है मीटू का, लोग महिलाएं खुल के आ रही हैं सामने, अपने बारे में बता रही हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं, लेकिन मेरा फिर एक पॉइंट यही निकल के आता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। कहीं ना कहीं ये एक पब्लिसिटी पाने का भी एक हंट हो सकता है लोगों का, उसमें जरूरी नहीं है कि वो जितने तथ्य दे रही हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। इसके प्रति कितनी कार्रवाई की जा रही है और कितना इस पे काम होना बाकी है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी पुरुष पे जब हम इस तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो उसकी भी एक डिग्निटी है समाज में, वो उसने जो एक समय से कहते हैं ना, एक इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है और उसको गंवाने में पल भर का समय, तो ये जो ड्यूरेशन है पूरी इज्जत कमाने का, जैसे को हम कहते हैं कि हमारे तो बाल ही सफेद हो गए, हमने अनुभव ऐसे नहीं बांटा, हमारा बहुत अनुभव है लाइफ का, इसलिए हमने ये इज्जत कमाई है। तो वो चाहे कोई एक अभिनेता हो या कोई साधारण पुरुष हो, उसके प्रति इन चीजों को देखना और समझना बेहद जरूरी है कि जो महिलाएं खुलकर अब मी टू अभियान के जरिए अपनी बातों को रख रही हैं, अपनी आप बीती को बता रही हैं, उसमें सच कितना है, और जो कार्यवाही की जा रही है वो किन तथ्यों को ध्यान में रख के की जा रही है, उसमें भी पक्ष और विपक्ष का देखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला अदालत करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं कौन है अगला कॉलर।
जी
जी, कौन बोल रहे हैं?
हेलो, मैं प्रज्ञा श्रीवास्तव बोल रही हूँ।
प्रज्ञा जी कहाँ से बोल रही है?
मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
अच्छा, बहुत स्वागत है प्रज्ञा। हाँ। जी आपका, बताएं क्या सोचती हैं आप, ये जो पूरा मामला सामने आया है मीटू की मुहिम से शुरू हो गई है, एक आपकी नजर में कैसे आप इसे डिकोड करती हैं, क्या कैसे देखती समझती हैं इस पूरे घटनाक्रम को?
पहली बात, अभी जब तक मैं लाइन में थी पीछे, तो वन्ना जी और निशा जी की मैंने बात सुनी, तो निशा जी ने अभी जो बात रखी, पहली बात तो मैं दो जो इसके मीटू में जो दो पॉइंट्स लोग मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो ये कि मीटू का मतलब ये नहीं है कि महिला वर्सेस पुरुष है। ये मीटू में बहुत सारे मेरे जो पुरुष मित्र हैं या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के दोस्त हैं, लोग हैं, वो भी अपने खिलाफ जो उनका जो भी शोषण हुआ या फिर उनका यौन उत्पीड़न हुआ या कभी उन्होंने किसी भी तरह का हैरेसमेंट झेला है, तो ये उसे सामने आ रहा है। जैसे कि मैं आपको ये मीटू की जो पावर है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ कि परसों मेरी मम्मा ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि वो हैशटैग क्या चल रहा है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जो भी इंग्लिश में जो उसका स्पेलिंग है। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि जब वो पढ़ा रही थी, जब वो शिक्षक थी, जब वो अपने करियर में थी, तब जो घटनाएं हुई थी उनके साथ या फिर जिन बच्चियों को पढ़ाती थी, जो उनके सहकर्मी पुरुष शिक्षक थे या फिर जो बच्चे थे, जो लड़के थे, जो और जिन जो ऊपर उनसे बड़े शिक्षक कर्मचारी थे, उनके उन पर जो उनके साथ जो हैरेसमेंट हुआ है उसके बारे में वो लिखना चाहती थी। दूसरा पॉइंट मैं इसी से अपना जोड़ना चाहूंगी कि मीटू को लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बड़ा ही शहरी एक आंदोलन है, बड़ा ही फैशन टाइप, मतलब एक नया ट्रेंड है।
प्रज्ञा तो, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, इस जो आप बात उठा रही हैं उस पहलू पर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में बनी रहें, अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है,
अगले श्रोता कौन है हमारे?
हेलो
जी,
जी मैं जगीशा बात कर रही हूँ।
जी जी, अपना नाम दोबारा बताएं।
मैं जगीशा बात कर रही हूँ।
जी कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
बताएं क्या सोचती हैं आप इस पूरे मामले पर, जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं।
जी हम मीटू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
जी हाँ।
तो मेरा अभी जो अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है ना, निष्पक्ष जांच के चक्कर में हम लोग ना कई बार औरतों को हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं औरतें सही नहीं है। तो हम, मेरा मानना है कि हमें पहले औरतों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही है। अगर वो कितने साल बाद भी कहें, चाहे वो 10 साल बाद कहें, चाहे वो 20 साल बाद कहें, चाहे वो कितने साल बाद भी कहें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि वो उस टाइम पे नहीं कह पाती। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, सामाजिक रीजंस भी हैं, घर के भी रीजंस हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे साथ 15 साल पहले कुछ भी हुआ, अगर छोटी सी भी चीज, अगर मेरी मम्मी को जाके सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ हुआ है, या मेरे साथ घर किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, छोटी सी बात है। तो अगर मैं ऑफिस में, अगर एक लड़की है छोटे शहर से जाके, अगर बड़े शहर में गई है, छोटे गाँव से बड़े शहर में गई है, तो
जगीशा की आवाज़ हमारे पास कट कट कर आ रही है, लेकिन हम अब हमें रुकना पड़ेगा, आवाज़ हमारे पास कट कट कर आ रही है जगीशा की। अगले कॉलर के पास चलते हैं और प्रज्ञा हमारे साथ लाइन पर बनी रहेंगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
वर्मिना बोल रही हूं, वर्मिना मिश्रा।
जी बहुत स्वागत है आपका, आप मेरे ख्याल से लखनऊ से बोल रही हैं।
जी मैं लखनऊ
से। जी हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं वंदना की चर्चा आप सुन रही होंगी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि 10 साल 15 साल के बाद जब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, क्यों इतना वक्त लग जाता है चीज़ों को निकल कर सामने आने में, यही बातें पहले समय पे निकल कर क्यों नहीं आ पाती?
देखिए, ये सवाल तो आप इस तरह कर रहे हैं जैसे कि आप अपने समाज को जानते नहीं हैं। जो लड़की अपने करियर के शुरुआती दौर में 17, 18, 19, 20, 21 वर्ष की लड़की होती है, पहली बार वो किसी जॉब के लिए जा रही है, और वो जा रही है कि इसलिए जॉब करने जा रही है कि उसको समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा, और उसको पहले ही मौके पर उसकी गरिमा का हनन होता है, उसके सम्मान का हनन होता है, उसका अपमान किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये इतनी आसान चीज है, और फिर उस वक्त उसकी हिम्मत कहाँ होती है उसने, तो उसकी बात कौन सुनेगा? ये तो ऐसी ही होगी जो हमारा समाज इस तरह का कहने वाला है, तो उसकी बात कौन सुनेगा? अब जब वो एक एक स्टेचर पर पहुंच गई है, उसने हिम्मत जुटा ली है, उसको गलत सही की और एक एक अन्याय से लड़ने की हिम्मत उसमें आ गई है, तब वो न्याय के लिए और लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए वो अब खड़ी होकर बोल रही है, तो इसमें तो समय तो लगेगा ही।
आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामलों में घर परिवार की, समाज की, सबकी एक भूमिका होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को संबल मिले और वो अपनी बात कह सकें घर में अपने बड़ों से?
जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, और चूंकि ये नहीं होता है, इसी लड़कियों का हैरेसमेंट समाज में या बाहर की दुनिया में ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अगर वो घर आकर शिकायत करें तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है, या फिर कहा जाता है कि तुम बाहर ही ना जाओ, तुम बाहर गई ही क्यों, तो या तो उनको बाहर की दुनिया में अपनी भूमिका निभाने से रोक दिया जाएगा कि बाहर जाओगी तो बाहर की दुनिया तो इस तरह की है, बाहर का समाज तो ऐसा है ही, तो इसलिए उनको बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा, और उनकी बात समझने की कोशिश नहीं की जाती है। तो अगर घर में पारदर्शिता रहे कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हम उसको अपने पेरेंट्स को बता सकें, उनके साथ डिस्कस कर सकें, और वो सही सलाह दे सकें, और हमारा हमारे साथ हर भले बुरे में खड़े हों, तो अगर हमें ये विश्वास हो तो हम जरूर घर में बताएंगे। और समाज तो आप देखते हैं कि जिस तरह से है कि लड़की की ही गलती देखने का चलन है हमारे यहाँ।
एक 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 आखिरी बात बताती जाए वंदना जी, आपको लगता है कि ये जो मुहिम शुरू हुई है, इससे महिलाओं की जो मौजूदा स्थिति है उसमें किसी तरह का फर्क आएगा?
फर्क महिलाओं की स्थिति में आए या ना आए, लेकिन पुरुषों में थोड़ा सा डर तो जरूर होगा इस बात का, और वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर अगर इसमें कुछ सजाएं भी हो जाए, अगर इसमें अभी तो ये शुरू हुआ है और अभी तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, तो शी बॉक्स पोर्टल की बात हुई है, और हमारे यहाँ पहले ICC थी ही, तो अगर इन सब चीजों से, हालांकि वो जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी थी उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ दिखता है, लेकिन पुरुषों में इस तरह की जो सत्ता के पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनमें अगर इस तरह की हलचल मचती है कि हम तुम्हारी फोन कभी भी खुल सकती है, तो एक ये सामाजिक जो उसका डर होता है कि हम जो बड़े भले बड़े शिष्ट बड़े भद्र माने जाते थे, जैसे आलोकनाथ का आप नाम ले सकते हैं, संस्कारी कहा जाता है उनको, और फिर बाबूजी कहे जाते हैं, फिर तो इस तरह के लोग, या आप समझिए कि उनको तो सजा भी हो गए तहलका वाले जो है, तो इस तरह के लोगों के जब सामने आ जाती है कि आप अपनी लड़की की, आप अपनी बेटी की उम्र के साथ, की बेटियों के साथ, तो ये शर्मिंदगी मेरा ख्याल है कि शायद शायद लोगों को कुछ अपना चरित्र बदलने पर
मजबूर कर दे, शायद मजबूर कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, अगले कॉलर को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रज्ञा, उससे पहले ये बताएं कि आपकी अपने यार दोस्तों में, हम उम्र लोगों में, सहेलियों के साथ बातचीत होती होगी, आपको लगता है कि जब से ये मामला सामने आया है मीटू का, जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ये किसी तरह का डर, जैसा कि ये लखनऊ वाली श्रोता हमारी वंदना जी कह रही थी कि पुरुषों में एक तरह का डर बैठ गया है इस तरह के मामलों को लेकर, आपको कभी ऐसा फील हुआ है?
एक जैसे कि जो बात पुरुषों के डर की हो रही है, जो 10-12 साल अचानक से एक बोलने के 10-12 साल बाद बोल रहे हैं, अच्छी चीज ये है, जैसे कि आपने पूछा कि दोस्तों यारों में आपकी क्या बात होती है, अच्छी चीज ये है कि जो 10-12 साल पहले वाली अपने इंसिडेंट्स बता रही हैं वो महिलाएं प्रौढ़ हो चुकी हैं। जो युवा महिलाएं हैं, मेरी हम उम्र है या फिर मुझसे छोटी है या फिर मुझसे 3-4 साल बड़ी हैं, उनके साथ और हमारा जो अभी मौजूदा समाज है उसमें इससे फायदा ये होगा कि अब हम तुरंत का तुरंत बोल रहे हैं। जैसे कि मेरी हम उम्र जितनी भी लड़कियां हैं वो उनके साथ जो पिछले साल या फिर पिछले के पिछले साल या पिछले महीने जो भी या फिर तुरंत अभी हालिया दिनों में जो भी उनको हैरेसमेंट हुआ है उसके बारे में तुरंत बोल रही हैं, वो लीगल एक्शन लेने की भी लगातार बात कर रही, लीगल एक्शन ले भी रही है। मैंने कई लड़कियां मेरे दोस्तों में है जिन्होंने FIR कराया है। तो जो 10-12 साल वाला है तो उससे ये अच्छा हुआ है कि जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना एक नकाब पहन के बैठे हैं, तो एक ये उदाहरण एक दृष्टांत के तौर पर एक हमारे सोसाइटी में बेंचमार्क बनता जा रहा है कि जो लड़कियों को अब जैसे वो 10-12 साल वो पहले वो लड़कियां क्यों नहीं बोल पाई और आज क्यों बोल रही हैं, क्योंकि आज हम सब ने मिलकर एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है समाज के तौर पर, हम थोड़ा एक कदम आगे बढ़े हैं। कल को 10-12 साल पहले वो लड़कियां जो बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट थी, बड़े बड़े पदों पे काम कर रही थी, वो भी नहीं बोल पाई क्योंकि हमने उनके अंदर इतना डर बैठा दिया था एक समाज के तौर पर। आज वो डर की जो गिरहे हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, जो कि बहुत ही सकारात्मक है। और ये मीटू कैंपेन की जो है उसका एक कहीं ना कहीं एक उसका एक सफलता मानी जा सकती है।
बहुत शुक्रिया प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने बेबाकी से राय रखी है। आपको सुन रही हम तमाम श्रोताओं में शामिल जो महिलाएं लड़कियां हैं वो भी हमें फोन करेंगी, इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ अगले श्रोता की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलो,
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन श्रोता हमसे जुड़ गए इस समय? लगता है संपर्क हमारा उनसे स्थापित नहीं हो पाया।
हेलो, जी,
कौन श्रोता बोल रहे हैं?
अंजू बोल रहे हैं बिहार से।
अंजू जी बिहार से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं बिहार में?
डेहरी ऑन सोन एक जगह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में।
जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू। अभी यहाँ पे मैं टीचर हूँ
जी,
तो मैं ये इसमें यही कहना चाहूंगी कि इसमें मीटू कैंपेन जो स्टार्टिंग हुआ है ये समझिए तो ये एक बेस है लड़कियों को यौन शोषण के खिलाफ बोलने का, तो बेस बन गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, हमको तो ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा कि पुरुषों में जरूर ये जो मैं बोल रही थी एक भय जरूर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थल पे लड़कियों को हरास किया जाता है उसमें बहुत कमी आएगी। हेलो
निशा जी, रखें अपनी बात।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी?
बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, हम ये बोल रहे थे कि मीटू कैंपेन के थ्रू लड़कियां जो अपनी बातें रख रही हैं उससे यौन शोषण के ये में बहुत रुकावट आएगी। पुरुषों में एक भय, वो मैम बोल रही थी, एक भय उत्पन्न हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा कदम है ये। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजू, हमारी एक श्रोता थी बिहार से। अगले श्रोता के पास चलते हैं हम।
होल्ड
जी, कौन सा बोल रहे हैं?
मैं डॉक्टर सदफ हावला हूँ।
जी जी, डॉक्टर सदफ फरीद बोल रही हैं आप लखनऊ से?
जी
जी जी, बताएं आप क्या सोचती हैं डॉक्टर साहब, ये जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, एक महिला होने के नाते कैसे आप रिएक्ट करती हैं इस तरह के मामलों पर?
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी तक सभी लोगों ने कहा, इट्स अ रियली गुड कैंपेन, बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही अच्छा कैंपेन है जो मीटू के नाम से स्टार्ट किया गया है। और इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जिन जो इतने सालों तक की जिन्होंने ये सारी प्रताड़ना झेली, सब प्रॉब्लम्स उठाई, कहीं ना कहीं उनको हिम्मत मिली है अपनी बातें खुल करके समाज के सामने कहने का। क्योंकि एक हमारा जो इंडियन सोशल सिस्टम है, उसमें ये आसान नहीं होता कि इस तरीके की बात आप किसी को सामने से बताएं। क्योंकि सोशली या सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी है, हमारा समाज की सोच ऐसी है कि कोई स्त्री अगर इस तरीके की बात करती है तो उसी के मान पर, उसके सम्मान पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष गलत है, हम उसी स्त्री के बारे में ही गलत सोच, एक गलत धारणा बन जाती है समाज की। शायद यही एक कारण रहा होगा कि इन सारी स्त्रियों ने 10 साल 20 साल 12 साल 15 साल तक की ये सारी चीजें अपने मन में दबा के रखी, और अब जब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो वो खुल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इससे एक सवाल जो मेरे मन में उठता है, हेलो
जी जी सुन रहे हैं आपको
जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये है कि क्या मीटू कैंपेन में सिर्फ स्त्रियों को ही सामने आना चाहिए? क्या शोषण हमारे समाज में सिर्फ स्त्रियों का ही होता है?
डॉक्टर सदफ फरीदी, आप डॉक्टर सदफ फरीद हमारे साथ बनी रहें लाइन पर, एक और श्रोता को हम शामिल करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि आपके सवाल को हम चर्चा में शामिल करके आगे बढ़ाएं। लाइन पर बनी रहिएगा। अगले श्रोता हमारे साथ कौन है इस समय?
नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार पांडे बोल रहा हूँ।
पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत ही जरूरी और आवश्यक कैंपेन शुरू हुआ है, लेकिन मैं जहाँ कस्बे में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैंने अपने गांव के एक लड़की से पूछा, जो फेसबुक पे काफी सक्रिय है, उससे मैंने पूछा कि आजकल एक बहुत कैंपेन चल रहा है, तुम देख रही हो? तो उन्होंने कहा कि कौन सा कैंपेन? हमने कहा मी टू। वो कही कि नहीं, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रेंड लिस्ट और तमाम तरह के वो दायरे में है, एक बंधे हुए हैं, वो इसके बारे में तो, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक ये बात नहीं, कस्बों में और गांव में। ये दिल्ली से जो खबरें आ रही है टीवी के माध्यम से, कुछ अखबार के माध्यम से, उसे हम जान पा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर दिन रात सक्रिय है वो जान पा रहे हैं।
पांडे जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर सदफ फरीद के पास चल रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टर साहिबा कि ये जो हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले मामले आ रहे हैं, वो छोटे कस्बों शहरों में भी सामने आएंगे, ये हो पाएगा? फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलेंगे?
ये जो जितने भी इंसिडेंट्स या जितनी भी चीजें अब तक सामने आई हैं, ये सिर्फ नामचीन हस्तियों से ही रिलेटेड रही हैं अब तक की। क्योंकि एक इसका एक रीजन ये भी है कि उनके पास इतना सोशल प्लेटफॉर्म है कि वो खुल करके सामने आ रहे हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और वहीं हमारे समाज का एक तबका ऐसा है, हमारे समाज में ढेरों स्त्रियां ऐसी हैं जो डेली बेसिस पर जिनका हैरेसमेंट होता है, कभी फिजिकल होता है, कभी मेंटल हैरेसमेंट होता है, लेकिन वो उस सोशल स्टेटस से बिलोंग करती हैं जहां वो कुछ नहीं बोल पाती, और अगर वो बोलना भी चाहें तो अक्सर उन्हें अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर उनका परिवार उनके साथ आकर के सामने आके खड़ा होता है तो बाकी लोग उनकी आवाज को दबा देते हैं, या उनकी आवाज अगर ऊपर उठती भी है तो हमारा जो सिस्टम है वो उसकी तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसलिए क्योंकि वो उतनी हाई प्रोफाइल नहीं होती, और एक आम इंसान के साथ हुई गलत घटना का उतना महत्व हमारे समाज में नहीं है जितना एक हाई प्रोफाइल इंसान के साथ हुई छोटी सी घटना का महत्व होता है। ये आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से।
जी जी,
बहुत। और मैं एक चीज के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जैसा मैंने अभी भी कहा था कि मीटू कैंपेन में व्हाई आर वी फोकसिंग अपॉन वीमेन ओनली, क्या हम मीटू कैंपेन में उन पुरुषों को भी नहीं शामिल हमें करना चाहिए जिनके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हुआ है? क्योंकि महत्वाकांक्षा और एक ऊंचे पद पे पहुंचने की लालसा जितनी एक पुरुष में होती है उतनी ही एक महिला में भी होती है, और एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जितना गलत काम एक पुरुष कर सकता है उतनी ही पॉसिबिलिटी महिलाओं के लिए भी हो गई है आज के समय में। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, शायद वो एग्जाम्पल आपको पता नहीं सही लगेगा या गलत। एक रिसेंटली एक मूवी आई थी
ऐतराज़। साहिबा, अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत से श्रोताओं को कार्यक्रम में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, सवाल लेकिन छूट गया अधूरा, महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न बंद कैसा होगा, लेकिन चर्चा जारी रखेंगे। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय के साथ हाजिर होंगे।